તારીખ 26/5/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 213 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 567
ભાઈ કો લિખા ગયા એ પત્ર સત્પુરુષ કે મહત્વ કો દર્શાતા હૈ ઓર સત્પુરુષ કે સ્વરૂપ કો ભી દર્શાતા હૈ જ્ઞાની પુરુષ કા ક્યા સ્વરૂપ હોતા હૈ ઓર ક્યો ઇસકી મહિમા જ્ઞાની મુનિ ભી કરતે હૈ જ્ઞાની ભી કરતે હૈ ઓર મુનિ ભી કરતે હૈ તો દેખતે હૈ કે ત્રિલોક કે નાથ જિસકે વશ હુએ હૈ ऐसा होने पर भी वह ऐसी अटपटी दशा में रहता है कि जिसके सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ है। ऐसे सत्पुरुष को हम पुनः पुनः स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? सत्पुरुष को त्रिलोक के नाथ वश हुए हैं। कौन त्रिलोक के नाथ है? अपना आत्मा तीन लोक का नाथ है। जिसकी श्रद्धा गुण की पर्याय ने उसको उस पर कब्जा कर लिया है, श्रद्धा ने अपने स्वरूप पर कब्जा किया है, इसलिए तीन लोक का नाथ उनको वश हो गया है। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि तीन लोक को नाथ, तीन लोक के नाथ को वश करने की ताकत रखते हैं। और ऐसा होने पर भी वह ऐसी अटपटी दशा में रहता है जैसा उदय है, जैसा उदय है वैसी दशा में वो रहता है। कोई मजदूर होता है तो मजदूरी कर लेता है, नौकर चाकरी का उदय हो तो नौकरी चाकरी कर लेता है। जैसा भी उदय हो, बाहर में किसी को सामान्य मनुष्य को पता चलता नहीं है। अज्ञानी की तरह रहता है। वो भी लिखते हैं कि हमको तो अज्ञानियों के बीच में अज्ञानी की तरह रहना है। बाहर में वो प्रदर्शन करते नहीं, कराते नहीं, और प्रदर्शन करने का उसका अभिप्राय भी होता नहीं। तो इतनी हमारी शक्ति है और हमारे पास उतनी पूंजी है, ये तो अनंत गुण की पूंजी हाथ में आ गई ना। केवल ज्ञान की तो लब्धि हुई है, गुण संपत्ति उतनी होने पर भी सामान्य मनुष्य को मालूम नहीं पड़े कि उनके पास क्या है अंदर में। उसमें भी वर्तमान काल तो ऐसा दुष्म काल है कि उसमें तो ज्ञानी को प्रसिद्ध होने लायक है ही नहीं। एक दृष्टांत है उस विषय में कि ये धर्म दारिद्र का काल है। कैसा काल है? धार्मिक दारिद्र बहुत है। जैसे कोई दरिद्रों की झोपड़पट्टी में कोई श्रीमंत सेठ साहूकार अकेला अपनी संपत्ति लेकर के जाएगा तो क्या होएगा? हाँ, लूट हो जाएगी, लूट लेंगे सब मिलके, क्या करेंगे? उसके पास जो भी है, पैसे हैं, गहने हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, जो कुछ है लूट लेंगे। ऐसे ही धर्म दारिद्र का काल है। वो तो लूटा नहीं जाएगा, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है।
सामने जिनकी भाव कटी करे, सामने वाले जिनकी भाव कटी हो, और आपके जो मजा नहीं
है। नहीं, उसमें जो पात्र होते हैं उनकी, वो तो खुद पहचान लेते हैं। पात्रता वाले, नेत्र वाले तो मुमुक्षु के नेत्र को तो पहचान लेते हैं, लेकिन धर्म दारिद्र में क्या, सामान्य मनुष्य, सामान्य मुमुक्षु आते हैं। तो अनेक प्रकार की शंकाएं उठाएगा, अनेक प्रकार की बातें बनेगी, तो इस पचड़े में वो क्यों जाए, तो क्या फायदा उसको? और खुद किस तरह से लूटा जाएगा मालूम है? उस आदमी जो श्रीमंत सेठ साहूकार था, उसने पैसा दिखाया तो लूट हुई ने? वरना तो मालूम नहीं पड़ता कि इनके पास क्या है, लेकिन वो प्रदर्शन करने लगा कि देखो मेरे पास इतने गहने हैं, इतने आभूषण हैं, इतने नोटों के बंडल है, वो है, वो है, तो क्या हो जाएगा? लूट लेंगे लोग। ऐसे ज्ञानी भी मेरे पास उतना ज्ञान है ऐसा कहने को जाएगा, मैं भी ज्ञानी हूं, गया उसका ज्ञान, गया, खुद ने लुटा दिया, ये बात हो जाएगी। इसलिए वो देखता है कि गुप्त रहने में जो अपनी सुरक्षा है, गुप्त रहने में जो अपना आत्मधन बढ़ाने का अवसर है, वो प्रसिद्ध होने में नहीं है। परिचय बढ़ता है, प्रसिद्ध होने में क्या होता है? परिचय बढ़ता है, और परिचय बढ़ने से क्या होता है? समय देना पड़ता है, अपने लिए समय कम बचता है, होता है कि नहीं होता है? तो अटपटी दशा में गुप्त रहते हैं, वो भी इनकी एक विचक्षणता है। क्या है? विचक्षणता है। वो भी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। वो तो क्या है, वास्तव में तो जैसा उदय है वैसा होता है। प्रसिद्धि होने वाले की प्रसिद्धि को कोई रोक सकते नहीं, और ज्ञानी खुद प्रसिद्धि चाहते नहीं, इसलिए सहज गुप्त रह जाते हैं। और बहुभाग नुकसान होने का, धर्म दारिद्र होने से और परिणामों की विषमता वाले जीव अधिक होने से नुकसान होने का ज्यादा बन जाता है। इसलिए वो अटपटी दशा में रहते हैं। एक तो उदय के कारण में अटपटी दशा में रहते हैं, खुद प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं इसलिए भी उदय की दशा में रहते हैं। तो बाहर में पहचान होना सामान्य मनुष्य को दुर्लभ होता है। हाँ, हाँ उसको गुप्त रहस्य से सर बिल्कुल हाँ वो तो उदय सबका एक प्रकार का होता नहीं, तो जैसा उदय होता है वैसा सहज होता है, जैसा उदय है वैसा सहज होता है। आयु थोड़ा लंबा होता तो वो भी बाहर आ जाते, क्योंकि उनका भी स्वाध्याय चालू हो गया था। अब स्वाध्याय चालू होने के बाद गुप्त रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो अभिप्राय है, उनके भाव हैं, वो लोग पकड़ने लगते हैं। और मोक्ष में भी पात्र जीव तो कुछेक तो होते हैं, वो पकड़ने लगते हैं, पकड़ते हैं तो बात बार आए बिना रहती नहीं है, थोड़े 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 करके बाहर आ जाती है बात। वो भी उद्याधीन है, वो भी उद्याधीन है, प्रभावना उदय होता है, तो सहज प्रवृत्ति भी ज्ञानी से प्रभावना अंग होने से हो ही जाती है। प्रभावना अंग खुद का है, वो तो परिणाम हो परिणाम है, लेकिन बाहर में कार्य तो उदय अनुसार ही होता है। जितना उदय होता है उतना ही होता है, ज्यादा प्रभावना अंग तो सभी ज्ञानी को होता है, लेकिन प्रभावना सबों से नहीं होती है, सबों से प्रभावना नहीं होती है, वो तो जितना उदय होता है उतना सहज हो जाता है। वो तो सहज बनता है, वो बनता है अभिप्राय में, वो है कि अपने को अपना आत्मकार्य करना है, मुख्य रूप से अपना आत्मकार्य करता है, तो हर उदय में वो अपना कार्य तो चालू ही रखते हैं, चालू रखते हैं। इसलिए असमाधान नहीं है, किसी भी उदय में असमाधान नहीं है। हाँ उतनी बात है, उस वक्त समकालीन जो जीव होते हैं जो हीन योग्यता वाले होते हैं, तो उदय का प्रसंग प्रभावना का प्रसंग कम बनता है, और योग्यता वाले उनके साथ समकाल में होते हैं तो प्रभावना सहज रूप से विशेष बनती है। यहाँ तो बात रही पहचान की, क्या बात रही कि सामान्य मनुष्य को पहचान नहीं होती। जैसे कि गुरुदेव का बहुत प्रभावना उदय था, दूसरा दृष्टांत ले लें, कृपालु देव का उतना प्रभावना उदय नहीं था। गुरुदेव शुरू से ही त्यागी थे, ये शुरू से गृहस्थ थे, दोनों का उदय अलग था, तो गृहस्थ ज्ञानी पर शंका ज्यादा उठती है, क्योंकि उनकी बाह्य प्रवृत्ति संसारी सामान्य संसारी जैसे होती है, और त्यागी होते हुए भी पहचाना कितने लोग ने वो भी देखो ना। ऐसा नहीं है कि त्यागी हो इसलिए सब पहचान लें, त्यागी भी थे, शास्त्र के मर्मज्ञ भी थे, प्रसिद्ध प्रवचनकार भी थे, सब कुछ था, फिर भी पहचाना कितने लोगों ने, कोई ने गिने लोग होंगे, पहचानने वाले तो इन्हें गिने लोग मिलेंगे, क्योंकि उसमें पात्रता भी चाहिए। तो यहाँ तो उतना मुद्दा है कि सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ है, क्यों कि दूसरे विद्वान लोग भी शास्त्र जानते हैं और ये भी शास्त्र जानते हैं, तो जितना शास्त्र जानते हैं उतने तो ज्ञानी नहीं होते, एक बात, दूसरा खाना पीना सोना बैठना उठना चलना बातें करना हंसना और रोना, ये सब सामान्य मनुष्य जैसा होता है। कैसा होता है? सामान्य मनुष्य जैसे बातें करते हैं वो भी करते हैं, वो भी बात करते करते हंसते हैं वो भी हंसते हैं, वो भी खाते हैं वही से वो भी खाते हैं, सब वैसे वैसे प्रक्रिया होती है। तो सामान्य मनुष्य को पहचान होना दुर्लभ होता है। नजर चाहिए, नजर चाहिए, नजर वाले को तो नेत्र से और मुख मुद्रा से ही पहचान आती है, भावों का परिचय हो जाता है। बाह्य लक्षण कोई होते ही नहीं, फिर पहचान होने का सवाल नहीं। वो तो कहते हैं कि त्रिलोक के नाथ वश होते हुए भी बाहर में सामान्य मनुष्य की तरह रहते हैं, ऐसे सत्पुरुष का हम पुनः पुनः स्तुति करते हैं, हम तो उसका गुणानुवाद करते हैं, बार बार गुणानुवाद करते हैं, हमको इसके गुण पर बहुमान आता है, हम उसका गुणानुवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक समय भी सर्वथा असंगता से रहना यह त्रिलोक को वश करने की अपेक्षा भी विकट कार्य है। क्या? कि एक समय भी सर्वथा असंग कैसे हुआ जाए, कि परिणाम पूरा का पूरा दूसरे पदार्थ के संग से कट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। क्या? वो निर्विकल दशा में होता है। कब होता है? कि जब शुद्धोप योग होता है, निर्विकल दशा होती है तो असंग दशा हो जाती है। एक समय भी ऐसा असंग होना, ये तीन लोक को वश करने के का जो विकट कार्य है, इससे भी विकट कार्य है। कोशिश कर लेना कितना विकट है, वो पता चल जाएगा कि कितना विकट है। ऐसी असंगता से जो त्रिकाल रहा है अंदर में परिणति है ना, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल असंगता में ही रहते हैं अंदर में। तो मैं एक केवल असंग चैतन्य हूँ, निर्लेप चैतन्य हूँ, ऐसा अनुभव वाली इसकी परिणति निर्लेप असंग परिणति चालू है, स्वरूपाकार परिणति है। ऐसा भीतर में जो रहते हैं उस सत्पुरुष के अंतकरण को देख करके, अंतकरण में अंदर ऐसे रहते हैं ना स्वरूपाकार परिणति, उसका अंतकरण है। ऐसे अंतकरण को देखकर हम परम आश्चर्य पाकर नमन करते हैं। हम तो परम आश्चर्य पाते हैं इसके अंतःकरण को देख करके, हमको आश्चर्य होता है देखो क्या लिखते हैं, और आश्चर्य पाते हैं उतना नहीं, हम तो नमस्कार कर लेते हैं कि वाह धन्य है तुम्हारा, तुम्हारी अंतरंग दशा को कि इतनी असंगता तुम रखते हो, सबों के बीच में रहते हुए पूर्व प्रारब्ध के तो कृपालुदेव तो संयोग के भीड़े में थे। कैसे थे? संयोग के भीड़े में घिरे हुए थे, फिर भी अंदर में असंग थे। तो कहते हैं कि ऐसी असंगता देख करके हम तो नमस्कार कर लेते हैं। हैं? उनका पुरुषार्थ देख करके। असंग रहना ऐसे नहीं होता है, तथा प्रकार का पुरुषार्थ होता है तो असंग रहना होता है। तो कहते हैं कि ऐसे पुरुषार्थ को देख करके और पुरुषार्थ की का रिजल्ट देख करके हमको नमस्कार आश्चर्य भी होता है और हमारा नमस्कार हो जाता है। ऐसे दशा को हमारा नमस्कार, शांत दशा तिन की पहचानी करे कर जोड़ी बनारसी नंदन। जिसने जो जिनेश्वर के लघु नंदन है, क्या बोले उसको? जिनेश्वर के लघु नंदन बोले हैं। मुनिराज हैं वो, उनके गुरु नंदन है। हाँ, ये लघु नंदन है। नंदन मैंने पुत्र, छोटे पुत्र और बड़े पुत्र। जिसने मिथ्यात का निकंदन कर दिया है, नंदन निकंदन ऐसा शब्द वैलिटेशन मिलता है, और वंदन कि हम तो इनकी शांत दशा देख करके, भीतर की शांति को देख करके हम तो हाथ जोड़ के वंदन नमस्कार करते हैं। समय दृष्टि को वंदन करना कि नहीं करना है? तो बनारसी दास तो हाथ जोड़ के वंदन करते हैं। उसमें क्या है, विद्वान लोग कहते हैं कि वो तो भाव वंदन की बात होती है। समय दृष्टि को वंदन करने की बात शास्त्र में आती है तो भाव से वंदन कर लेना, द्रव से हाथ जोड़ के वंदन नहीं करना होता है, क्योंकि वो तो पूजा का अंग हो गया। वो तो द्रव पूजा होगी ना, तो द्रव पूजा तो कर नहीं सकते विद्वानों की दृष्टि से, मिथ्यात लग जाता है। तो भाव वंदन की बात आती है तो कि बनारसी दास ने तो करे कर जोड़ी, मैं तो कर जोड़ के वंदन करता हूँ, भाव से वंदन करता हूँ और द्रव से भी वंदन करता हूँ। और जो भाव से वंदन करे वो तो चोरी थोड़ी ना करता है। कोई चोरी करता है क्या? कि नहीं, भाव से तो वंदन करो, द्रव से नहीं करो, बाहर में कोई दिख जाएगा देखने का, ऐसी बात थोड़ी ना। जो भाव से करता है वो द्रव से करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ, जो भाव से करेगा वो द्रव से क्यों नहीं करेगा? वो करेगा ही करेगा। इसलिए वो खुद तो लिखते हैं कि मैं तो नमन करता हूं, पर नहीं, एक समय भी सर्वथा असंगता से रहना, मैंने अल्पकाल में असंगता करना वो बहुत विकट कार्य है। वो तो बहुत रहते हैं, नेत्रिकाल रहते हैं, लगातार रहते हैं, अंतकरण से देखो तो हमको तो आश्चर्य होता है कि इतना पुरुषार्थ का इतना बड़ा पराक्रम, क्या बात है। हमको आश्चर्य भी होता है और हम नमस्कार भी करते हैं।
सब उदय प्रसन्न आ गए।
सब उदय प्रसंग में, त्रिकाल में मैंने सभी उदय प्रसंग में और त्रिकाल में मैंने तीनों काल के ज्ञानियों के सबकी बात आ गई। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, सो बात भी नहीं है। हाँ, ऐसा पुरुषार्थ होता है। क्या ऐसा पुरुषार्थ होता है और ऐसा अंतकरण होता है, अंदर की परिणति ऐसी होती है। वो तो जिसको देखने में आए उनको पता चले, अज्ञानी को तो क्या है कि सामान्य अज्ञानी को तो वो बात दिखेगी नहीं। जो उत्कृष्ट मुमुक्षु है उनको दिखेगी, तो उत्कृष्ट मुमुक्षु भी नजदीक के भविष्य के ज्ञानी ही है और क्या है, वो तो नजदीक के भविष्य के ज्ञानी ही है, तो उनकी नजर में आएगा। और चीज कोई ऐसी है कि आश्चर्य हुए बिना रहता नहीं। वास्तव में आश्चर्यकारक दशा है ही, इसलिए आश्चर्य करते हैं, ऐसी ही दशा है। हाँ, बिना मैंने पुरुषार्थ सहज हो गया है, इसका मतलब क्या है, पुरुषार्थ नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा सहज हो गया है वो बात है। उतना आगे बढ़ गए हैं तो पुरुषार्थ भी सहज हो गया है, करना नहीं पड़ता वो बात है। वो तो उसकी विशेषता बताने की बात है। नहीं, उनकी जो अंतःकरण में ने उसकी जो आत्म परिणति है उसको देख करके आश्चर्य होता है। आत्माकार परिणति होती है, स्वरूपाकार परिणति होती है। जो दशा परम तत्व को झेलती है, जो दशा परम तत्व को झेलती है, वो आश्चर्यकारक दशा है। तो ताकत चाहिए इसके लिए, परमात्मा स्वरूप को, परमात्मा को उठाने की ताकत भी चाहिए ना। भागवत में एक दृष्टांत आता है कि श्री कृष्ण थे, उसके नाम बहुत है, उसमें गोवर्धन भी इसका नाम है। क्या गोवर्धन का दो अर्थ है, एक तो वो बचपन में गैये को वो चराते थे गोकुल में, तो गाय के बछड़े बड़े बड़े होते तो गोवर्धन हो गया। और एक गोवर्धन नाम का पर्वत है वहां, तो क्या है कि कुछ एक जो राक्षस लोग थे वो जान गए थे कि यही श्री कृष्ण है जो हम लोगों को मारने वाला है, वो मारते थे उनको, तो उनको वो तो फ्रिक्शन की लड़ाई की बात होगी, दुश्मनी की बात होगी, वो लोग उनको परेशान करने को आते थे। फिर उतना पानी गिराया आकाश में से, वो लोग विद्याधर लोग थे, राक्षस लोग, बहुत बारिश आई, तो फिर सब घबरा गए कि भाई ये सब गैया का क्या होगा, गाय सब उतनी मर जाएगी और इनके जो साथी लोग थे वो भी पानी में बह जाएंगे। तो उसने क्या किया, सारे पर्वत जो गोवर्धन पर्वत थे उसको उठा लिया कि भाई नीचे आ जाओ सब, अब तुमको पानी का एक बूंद भी लगने वाला नहीं है। तो सारे पर्वत को उठा लिया, कैसे उठा लिया, एक हाथ की आखिर की, गुजराती में तचली कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं है, कनिष्ठिका, उसे उंगली पर उठा लिया पूरा पर्वत को। अब बात क्या है इसमें कि ये चतुर्थ गुण स्थान में मोक्ष मार्ग की जघन्य दशा होती है तत्ली आंगड़ी, और ताकत कितनी कि पूरे परमात्मा को उठा ले, पूरे परमात्मा को धारण कर ले और पूरा सुरक्षित हो जाए। खुद तो सुरक्षित हो जाए लेकिन वो गोवर्धन के नीचे जो भी आ जाए वो भी सुरक्षित हो जाए। उसमें दृष्टांत ऐसा आता है तो उसका कुछ अध्यात्म वो निकालते हैं उसमें, वो लोग भी अध्यात्म भागवत में वही निकालते हैं। हाँ बुला लेते हैं, उनके जो साथीदार हैं उनको बुला लेते हैं, भाई आ जाओ नीचे, फिर कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो एक तचली आंगली पे सारा पर्वत उठाने का ताकत है, वो कोई आश्चर्यकारक नहीं है क्या? ऐसे मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पे पैर रखा है और पूरा परमात्मा को उठा लिया तो परम आश्चर्यकारक दशा है, दशा पर परम आश्चर्यकारक दशा है। होता है वो भी होता है। देव को कहते हैं कि हम तो ऐसा ही मानते हैं होता है, तो जिनेंद्र के सामने अब बोलते हैं जिनेश्वर की दिव्य ध्वनि में तो आया कि पंचम काल में कोई मोक्ष जाएगा नहीं। हमारा पुरुषार्थ कोई दूसरी बात कहता है। क्या कहते हैं? हमारा पुरुषार्थ कोई दूसरी बात कहता है कि नहीं इस काल में भी मोक्ष हो सकता है। और यहां से कोई लब्धि पाकर के महाविद्य क्षेत्र में जाए तो हो सकता है, इस काल में भी हो सकता है, इस काल में इस क्षेत्र से नहीं हो सकता है। लेकिन इस काल में नहीं हो सकता है वो बात छोड़ दो, वो शब्द को छोड़ दो, हटाओ शब्द को, ऐसा कहते हैं, वापस खींचो अपना शब्द, ऐसा कहते हैं कितना जोर है, जोर कितना है पुरुषार्थ का। हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी जीव का मोक्ष हो सकता है, फिर भी जैन ग्रंथों में देखो, जैन ग्रंथों में, मेरे ग्रंथ में वो बात नहीं है, जैन ग्रंथों में
है? ऐसा ही मानते हैं, हम तो ऐसा ही मानते हैं,
हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस काल में भी होता है, लेकिन जैन ग्रंथों में तो क्वचित प्रतिपादन हुआ है, हमने भी पढ़ा है, जैन ग्रंथ हमने भी पढ़ लिया है, उसमें वो प्रतिपादन हुआ है, तद अनुसार इस काल में मोक्ष नहीं होता हो, मान लो कि दिव्य ध्वनि अनुसार जैन ग्रंथ में बात आई है, माना कि नहीं होता हो, तो इस क्षेत्र में यह प्रतिपादन तू रख, हे परमात्मा, हे जिनेंद्र, ये प्रतिपादन क्षेत्र की मर्यादा में तुमको रखना पड़ेगा, काल की मर्यादा में नहीं। हम तो इस काल में भी जा सकते हैं, इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, इसमें क्या है, हमको इस क्षेत्र का मोह थोड़ी ना है। हाँ, इस क्षेत्र के लिए यह प्रतिपादन तू रख ले, अपना प्रतिपादन, या तो वापिस हटा ले अपने शब्द को, या तो क्षेत्र की मर्यादा कर ले, बाकी काल में तो नहीं चलेगा, हम तो इस काल में जाने वाले हैं। और हमें मोक्ष देने की अपेक्षा, हमको तो वो भी नहीं चाहिए, मोक्ष तुमको नहीं देना है ना, मत दो, रख लो अपने पास, हमें कोई परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? कि हमें मोक्ष देने की अपेक्षा ऐसा एक योग प्रदान कर दें कि हम सत्पुरुष के ही चरणों का ध्यान करें और उसके समीप ही रहें, बस हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। पर सम्यक दर्शन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? भावभाषण चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मुमुक्षु की भूमिका में आगे बढ़े, वो आगे बढ़ने की दिशा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? कि कुछ नहीं चाहिए हमको, तो सत्पुरुष का चरण का ध्यान रहे, वो दशा सबसे ऊपर वाली है। क्या अगर हमको सत्पुरुष के चरण का ध्यान रहे और इसकी समीपता मिल जाए तो ये मोक्ष से भी हमारे लिए तो अधिक है। जाओ, हमको मोक्ष देने की अपेक्षा ऐसा योग प्रदान कर दे, बस इससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं। क्या रहस्य है इस? बात तो कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि इसमें भी कोई रहस्य है? नहीं, उसमें रहस्य है, उसमें सब जगह से उठ जाएगा वो। एक सत्पुरुष के चरण का ध्यान रहेगा तो फिर और जगह सब ध्यान छूट
जाएगा।
वो साक्षात मोक्ष है, सत्पुरुष साक्षात मोक्ष है। और साक्षात मोक्ष हमको मिल गया, फिर दूसरा परोक्ष मोक्ष की हम चिंता क्यों करें कि इस काल में नहीं होता है, इस क्षेत्र में नहीं होता है, उधर ग्रंथ में वो लिखा है, उधर ग्रंथ में वो लिखा है, वो पचड़े में हमको जाना नहीं है। जा, हमको साक्षात मोक्ष मिल गया।
अधूरा कुछ नहीं मांगा, अधूरा नहीं मांगा कुछ,
नहीं कोई अधूरा बुधरा नहीं है उसमें, पूरा आ गया सब उसमें, सत्पुरुष के चरण के ध्यान में सब कुछ आ गया। ऐसी भी एक दशा आती है, क्या कहते हैं कि मुमुक्षु को ऐसी भी एक दशा आती है तब उनको मोक्ष मार्ग और मोक्ष सब निकट है। 223 में वो बात क्या है? वो बात 223 में कहा है कि तब मोक्ष मार्ग और मोक्ष निकट है। एक दफे वो दशा आती है, उनको वहाँ लिखा है, वो बोला तो वहाँ ऐसा लिखा है, 223 में ऐसा लिखा है। बाकी उनको कहाँ है परवाह है? उनको तो कोई परवाह नहीं है, ना मोक्ष मार्ग की परवाह है, ना मोक्ष की भी परवाह है। जैसे सम्यक दर्शन होते क्या हुआ कि हे परमात्मा, 680 में लिखा ना, 680 में, तो ज्यादा से ज्यादा तू क्या कर सकता है कि मोक्ष का प्रदान कर सकता है, है? लेकिन हमारे हमारे आत्मस्वरूप में उतनी रमणता है कि अब तो हमें मोक्ष की भी परवाह नहीं है। पर मोक्ष लेना, हमको लेना और तुमको देना, ये कड़ाकुट क्यों चाहिए हमको? लेने देने के कड़ाकुट में हम क्यों पड़े? हाँ, अब लेने देने की परिस्थिति समाप्त होगी। जैसे सम्यक दर्शन में स्वरूप का साक्षात्कार होने से ये बात होती है भोग तो बाद में होगा, ये तो जघन्य दशा है, फिर भी मोक्ष की परवाह नहीं करता। वैसे ही सत्पुरुष मिल जिसको मिलता है वो मोक्ष की परवाह नहीं करता। ऐसी एक परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति सामान्य परिस्थिति नहीं है। क्या कहते हैं कि वो परिस्थिति सामान्य परिस्थिति नहीं है, वो असामान्य परिस्थिति है। कि जैसे कि सर्वस्व मिल गया उनको, बात खत्म।
ये भाव तो है, सारे संसार को कट जाते
हैं,
ये जो भाव आता है सारे संसार से कट जाता है,
सारा संसार से उठ गया वो।
और
कैसे, कि जैसे खेलते हुए खेलने से काम होता है, ऐसे ही हो जाता है। जो काम बहुत कठिनाई से भी नहीं होता है वो सहज मात्र में हो जाता है। खेल खेल में हो गया, हमारे गुजराती में रमत मात्र मा थी जाए थे, रमत मात्र मा थी जाए। हाँ, और ऐसा रमत मात्र में खेल खेल में काम हो जाए, ये भी एक सत्पुरुष की ही देन है, वही इनकी देन है, उनकी यही इनकी कृपा है, बाकी तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत लिखा है सत्पुरुष के विषय में, कलम चलाया है, फैंटास्टिक काम। बहुत रहस्य है उसमें, कल बात थोड़ी करेंगे, बहुत रहस्य है इसमें।